श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद चौदहवां अध्याय राजा वेन की कथा श्लोक संख्या 14
तेरह में
श्लोक 13 है हमारा, लेकिन उसमें तात्पर्य नहीं है इसके लिए।
अच्छा, तो पढ़ेंगे 14 ना, यहाँ 14 है। अच्छा, एवं अध्यवसौ यौनम एवं अध्यवसायैनम मुनयो गूढ़मन्यवः उपव्रज्या ब्रुवन्वेनं सांत्वयित्वा च सामभिः। ऐसा निश्चय करके ऋषिगण राजा वेन के पास गए और अपना वास्तविक क्रोध छिपाते हुए उन्होंने उसे मीठे वचनों से समझाया बुझाया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, मुनयः ऊचुः नृप वर्य निबोध एतत् यत् ते विज्ञापयाम
विज्ञापयाम
भोः
भोः
आयुः
आयुः
श्री
श्री
बल
बल
कीर्तिनाम
कीर्तिनाम
तव
तव
तात
तात
विवर्धनम
विवर्धनम
मुनया ऊचुः
मुनया ऊचुः
नृपवर्य निबोधेतत्
नृपवर्य निबोधेतत्
यत्ते विज्ञापयाम भो
यत्ते विज्ञापयाम भो
आयुः श्रीबलकीर्तिनाम
आयुः श्रीबलकीर्तिनाम
तव तात विवर्धनम
तव तात विवर्धनम
मुनयः ऊचुः
मुनयः ऊचुः
नृपवर्य निबोधैतत्
नृपवर्य निबोधैतत्
यत्ते विज्ञापयाम भो
यत्ते विज्ञापयाम भो
आयुः श्रीबलकीर्तिनाम
आयुः श्रीबलकीर्तिनाम
तव तात विवर्धनम
तव तात विवर्धनम
मुनयः ऊचुः
मुनयः ऊचुः
नृपवर्य निबोधैतत्
नृपवर्य निबोधैतत्
यत्ते विज्ञापयाम भो
यत्ते विज्ञापयाम भो
आयुः श्रीबलकीर्तिनाम
आयुः श्रीबलकीर्तिनाम
तव तात विवर्धनम
तव तात विवर्धनम मुनया ऊचुः नृपवर्य निबोधयेतत् यत्ते विज्ञापयाम भो आयुः श्रीबलकीर्तिनाम् तव तात विवर्धनम्
मुनयः ऊचुः
मुनयः ऊचुः नृपवर्य निबोधयेतत्
यत्ते विज्ञापयाम भो
यत्ते विज्ञापयाम भो
आयुः श्रीबलकीर्तिनाम्
आयुः श्रीबलकीर्तिनाम्
तव तात विवर्धनम्
तव तात विवर्धनम्
मुनयः ऊचुः
मुनयः ऊचुः
नृपवर्य निबोधयेतत्
नृपवर्य निबोधयेतत्
यत्ते विज्ञापयाम भो
यत्ते विज्ञापयाम भो
मुनयः ऊचुः
मुनयः ऊचुः
मुनियों ने कहा नृपवर्य
नृपवर्य
हे राजाओं में श्रेष्ठ
हे राजाओं में श्रेष्ठ
निबोध
निबोध
समझा समझने का यत्न करो
समझने का यत्न करो
एतत्
एतत्
यह
यह
यत्
यत्
जो
जो
ते तुमको
तुमको
विज्ञापयाम
विज्ञापयाम
हम उपदेश देंगे
हम उपदेश देंगे
भो
भो
हे
राजा
आयुः
आयुः
उम्र
उम्र
श्री
श्री
ऐश्वर्य
ऐश्वर्य
बल
बल
शक्ति
शक्ति
कीर्तिनाम
कीर्तिनाम
उत्तम ख्याति
उत्तम ख्याति
तव
तव
तुम्हारी
तुम्हारी
तात
तात
हे
पुत्र
विवर्धनम
विवर्धनम
बढ़ाने वाली
बढ़ाने वाली।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपके पास सद उपदेश देने आए हैं, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा करने से आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता के अनुसार राजतंत्र में राजा को साधु पुरुष तथा मुनिजन सलाह देते हैं। उनकी सलाह से वह सबसे बड़ा शासक बन सकता है और उसके राज्य का प्रत्येक प्राणी सुखी, शांत तथा संपन्न हो सकता है। बड़े बड़े राजा महान साधु पुरुषों के आदेशों को ग्रहण करने के लिए सचेष्ट रहते थे। राजा लोग बड़े बड़े मुनियों तथा यथा पराशर, व्यासदेव, नारद, देवल तथा असित के आदेशों को मानते थे। दूसरे शब्दों में, पहले वे साधु पुरुषों की सत्ता को स्वीकारते थे और तब अपनी राजतंत्र शक्ति का प्रयोग करते थे। दुर्भाग्यवश कलयुग में राज्य का मुखिया साधु पुरुषों द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन नहीं करता, जिससे न तो प्रजा और न ही सरकारी व्यक्ति सुखी रहते हैं। उसकी आयु घट जाती है। प्राय हर व्यक्ति दुष्ट है तथा शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों से विहीन होता जा रहा है। यदि इस प्रजातांत्रिक युग में जनता सुखी तथा संपन्न होना चाहती है तो उन्हें चाहिए कि वे धूर्तों तथा मूर्खों को न चुने जिनमें साधु पुरुषों के लिए कोई आदर भाव नहीं है। ओम अज्ञान विमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदात्मकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरविनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहवरललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्मिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भौतिक जगत में, और केवल भौतिक जगत में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई ऊपर एक अधिकारी व्यक्ति चाहिए, जिसकी बातें वो स्वीकार करें, जिनके आदेशों को वो पालन करें, जिनको कि वो उत्तर दे सकें, जिनके मार्गदर्शन में वो चलें, जिनके नेतृत्व में वो चलें। गोलोक वृंदावन में भी यद्यपि सब मुक्त अवस्था में है, प्रेम भक्ति के चरम सीमा पर स्थित हैं, फिर भी वहाँ एक प्रणाली है, पद्धति है, एक क्रम है। जैसे सबसे पहले श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण के सबसे परम भक्त कौन है?
श्रीमती
राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के साथ में 8 सखियां हैं जो श्रीमती राधा रानी की सेवा करती है, और हर एक सखी के नीचे कई दल हैं जिनमें और गोपियां हैं, और हर एक गोपी के साथ में थोड़ी और कम आयु वाली गोपी जिनको मंजरी बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे दल जिसको यूथ बोलते हैं, यूथ, तो ऐसे बहुत सारे दल हैं, और हर एक के ऊपर एक कोई अधिकारी अधिकारिणी गोपी, फिर उनके ऊपर और एक, उनके ऊपर और एक, ऐसे करके क्रम होता है। उसी तरह से ग्वाल बालों में भी थोड़े ऐसे होते हैं जो प्रमुख होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, उनके नीचे बहुत सारे ग्वाल बाल होते हैं, फिर उनके नीचे हरे के अंदर नीचे और कोई होते हैं, इस तरह से चलता है। तो नंद बाबा माता यशोदा भी वरिष्ठ माने जाते हैं। तो सारे ब्रजवासी जब किसी बात से विचलित होते हैं तो वो भी जाते हैं नंद महाराज के पास, गोपियाँ माता यशोदा के पास जाती हैं। इस तरह से गोलोक वृंदावन में भी ऐसे एक क्रम है। ऐसा नहीं है कि हम अभी गोलोक वृंदावन में हैं तो हम जो चाहे वो कर लेंगे, वैसे क्योंकि वो इतने परम अवस्था में हैं इसलिए वो जो चाहे करते हैं, क्योंकि उनको वो छूट मिलती है, परंतु वो करते नहीं, वो केवल वही करते हैं जो उनके स्वामी उनके स्वामिनी जो भी हैं वो उनको जो आदेश देते हैं, जैसे उनको प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है वही करते हैं। ये आध्यात्मिक जगत की पहचान है और ये हमारा वास्तविक परिचय है। ना हम विप्रो न च नरपति, ना कि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पदकमलयोर् दास दासानु दासः। तो मूल रूप से जो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कह रहे हैं वो आध्यात्मिक परिचय है। भौतिक परिचय क्या है? मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ इत्यादि, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ इत्यादि, भौतिक दुनिया की पहचान है। परंतु आध्यात्मिक जगत में क्या पहचान है? गोपी भर्तु हो दास दासानु दासा, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दासा। तो गोपियों के भर्तु, भर्तु अर्थात कौन?
स्वामी।
स्वामी, तो गोपियों के स्वामी कौन है?
श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के पद कमल, कमलयोर द्विवचन, दो पैर होते हैं, दो चरण होते हैं। तो वैसे पैर नहीं बोलना चाहिए, चरण, भगवान के संबंध में कभी पैर नहीं करना। मुझे अभी तक याद है हम लोग जब वृंदावन में पहले रहा करते थे, हमें एक आश्रम किसी ने दान में दिया था, फिर उन्होंने वापस ले लिया, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग रहे थे वहाँ पे। तो राधा गोपीनाथ मंदिर के राधा गोपीनाथ प्रभु वहाँ आए थे, तो हम लोग उस समय बम्बई की हिंदी बोलने वाले थे सब, शुद्ध हिंदी वगैरह नहीं आती थी। तो वहाँ राधा गोपीनाथ प्रभु प्रवचन दे रहे थे, तो वहाँ आश्रम पुराना था इसलिए बहुत सारे साधु वगैरह आते थे। तो बातों बातों में वो प्रवचन दे रहे थे राधा गोपीनाथ प्रभु, तो उन्हें बोला कृष्ण के पैरों में, तो एक साधु ने रोक दिया प्रवचन को, गुस्सा के बोले आप ऐसे नहीं बोल सकते। कैसे नहीं बोल सकते, क्या हो? कृष्ण के पैर नहीं, चरण बोलिए। ये पैर, ये सही भाषा नहीं, ये साधारण हम लोग के लिए बोल सकते हैं, लेकिन भगवान, भगवान के महान भक्तों के लिए क्लिष्ट जो भाषा है वो है चरण। तो खैर पद कमल योर, तो श्री कृष्ण के पद कमल के चरण कमलों के, दो चरण कमलों के दासों के दासों का दास मैं हूं। इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई है, उनके ऊपर कोई है, उनके ऊपर कृष्ण। वैसे जितने दूरी पे हम हैं उतने महान। आध्यात्मिक जगत में भावना ये रहती है, भावना की बात कर रहे हैं। जो सोचते हैं मैं सीधे प्रत्यक्ष मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, वो अवसर तो मिलता है, क्योंकि भाव ऐसा है कि गोलोक वृंदावन में जो सारे सबसे ऊंचे भक्त होते हैं वो अन्यों को आगे करते हैं, अन्यों को वो आगे बढ़ाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिला देते हैं। श्रीमती राधारा ने अपने सखियों को मिला देती है कृष्ण से, हालांकि गोपियों की इच्छा होती है कि केवल श्रीमती राधारानी की सेवा करे, राधारानी कृष्ण की सेवा करे, परंतु राधारानी का भाव है गोपियों को लेके जाओ। इस तरह से जो सबसे ऊंचे हैं वो चाहते हैं कि सब लोग आए और हमसे आगे निकल जाए, और जो निम्न स्तर पे हैं उनको लगता है कि हम सबसे पीछे ही रहे, केवल सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक रहे, और ऐसे भक्तों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और जो सबसे ऊंचे हैं वो तो है ही श्रेष्ठ, और वो अपने भाव को दिखाते हैं जब वो अन्यों को भी आगे ले जाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा है, कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, कि मेरे ऊपर कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं होने चाहिए। लेकिन भौतिक आध्यात्मिक जगत में, ये भौतिक जगत में ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि सेवा भावना खत्म हो जाती है भौतिक जगत में, और भोग भावना उत्पन्न होती है। सेवा और भोग दोनों ही एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों में से एक ही रहेगा। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्जैर्गुणेन कारणं गुणसंगस्य सदसत् योनिजनस्य। तो वास्तविक पुरुष अर्थात भोक्ता कृष्ण, परंतु जीव कभी कभी नकली भोक्ता बनना चाहता है और यहाँ का भोग करना चाहता है। भुङ्क्ते प्रकृति, तो प्रकृति का भोग करने की इच्छा से जब नकली पुरुष यहाँ पे आ जाता है भौतिक जगत में, तो क्या होता है? सद असत योनि जन्मसु, उसे तरह तरह के कभी ऊंचे योनि कभी नीचे योनि में जन्म लेना पड़ता है। कारण गुण संग अस्य, इन तीन गुणों के प्रभाव से उनके अधीन होकर उनके चंगुल में फंस के कभी श्रेष्ठ योनि में कभी निम्न योनि में कभी देवलोक में कभी नरक लोक में ऐसे घूमना पड़ता है। क्यों? भोग भावना के कारण। तो भोग भावना जब तक होती है सेवा वृत्ति नहीं होती। सेवा वृत्ति का अनुशीलन करना है तो भोग वृत्ति को त्यागना चाहिए। तो कौन सा पहले हो? जब तक भोग भावना है सेवा नहीं होगी, सेवा करना है तो भोग नहीं हो सकता। तो इसलिए सेवोन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यतः, तो सेवा शुरू कर देनी चाहिए, भले हमारे अंदर भोग भावना हो या ना हो। सबके लिए श्री कृष्ण की भक्ति है, सेवा है। तो काम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। तो चाहे कोई भोगी हो, कोई भोग चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है, कोई ज्ञानी है, योगी है, कर्मी है, कोई भी हो, सबको कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। और जैसे जैसे सेवा करते रहेंगे तो धीरे धीरे से सेवोन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यतः, अपने आप में ही ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, तो ग्राह्य इंद्रियों से जो संभव नहीं है वो हमारी इंद्रिय सेवा के द्वारा सब ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। तो सेवा प्रथम है, तो सेवा करके ये भोग भावना घटेगी। जैसे जैसे भोग भावना घटेगी वैसे सेवा की तीव्रता बढ़ेगी, जैसे सेवा की तीव्रता बढ़ेगी भोग भावना और भी घटेगी। इस तरह से क्रमशः व्यक्ति शुद्ध सेवा की ओर आगे चलता है और यहाँ इस भौतिक जगत में रह के भी वो मुक्त हो सकता है। कौन सा श्लोक है रूप गोस्वामी द्वारा? यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। यह मतलब यहाँ इस जगत में, तो यहाँ इस जगत में भी जो हरि का दास हो जाता है, यह यस्य हरिर्दास्य, जो हरि का दास बन के कर्मणा अपने कार्यों से, मनसा मन से, गिरा अपने वाणी से, वो भगवान की सेवा में लगता है तो धीरे धीरे वो मुक्त पुरुष निखिलाश्वप्यवस्था से हर अवस्था में 24 घंटे भगवान की सेवा में लगता है तो वो मुक्त पुरुष कहलाता है। तो ये मुक्ति की परिभाषा है। तो इस तरह से आध्यात्मिक जगत में भी जो एक भावना होती है वो सेवा की भावना, सेवा की भावना से कभी भी व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता, कभी अपने आप को भोक्ता नहीं मानता, यहां तक कि वो निराकार ब्रह्म में भी लीन नहीं होना चाहता। यद्यपि निराकार ब्रह्म में भोग की भावना नहीं रहती है परंतु सेवा की भावना भी नहीं रहती है। ये एक तटस्थ स्थान है। इसलिए हनुमान जी क्या प्रार्थना करते हैं?
अहम् दासयुक्त इति यत्र विरूप्यते।
कौन सा श्लोक बोलेंगे?
भगवान
प्रभो
अहम् दास,
अहम् दास है इति यत्र
विलुप्यते,
विलुप्यते। और उसके आगे न स्पृहयामि मोक्षये, कि हे भगवान मैं ये मोक्ष मुक्ति वगैरह नहीं चाहता, मोक्ष अर्थात निराकार में लीन हो जाना मैं क्यों नहीं चाहता हूं? क्योंकि जब निराकार में लीन हो जाऊंगा ठीक है भोग की भावना नहीं रहेगी परंतु सेवा की भावना नष्ट हो जाएगी। सेवा की भावना क्या है? अहम दास और आप प्रभु है, भगवान प्रभु, कि आप प्रभु हैं मैं दास हूं और मेरा काम है आपकी सेवा करना, ये भावना नष्ट हो जाएगी। यत्र विलुप्यते, सेवा भाव नष्ट है इसलिए फिर मैं नहीं जाऊंगा ऊपर, मेरा कार्य प्रारंभ मुझे नहीं जाना है। तो सेवा ही श्रेष्ठ है और सेवा जब तब तक नहीं हो सकती जब तक हम किसी दूसरे को अपने ऊपर नहीं मानते। यदि हम ही सबको ऊपर, सबसे ऊपर मानेंगे अपने आप को तो हम चाहेंगे कि दूसरे हमारी सेवा करें, हम दूसरों की सेवा नहीं करेंगे। यदि हमको सेवा करनी है दूसरों की तो फिर हमको समझना चाहिए कि ये कौन है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसे पद्धति बनाई हमारी संस्था में, जैसे कि एक दूसरे को हम प्रभु कह के बुलाते हैं, जैसे सचिपुत्र प्रभु है ना, तो प्रभु कह के बुलाएंगे तो क्या मतलब इसका? मैं दास वो प्रभु। कभी कभी जो नए भक्त होते हैं ना तो वो अपना स्वयं का परिचय कैसे देते हैं? मेरा नाम फलाना फलाना प्रभु है। अपना परिचय देते समय कभी प्रभु नहीं बोलना चाहिए, अपना परिचय देते समय दास ही बोलते हैं। परंतु दूसरों का संबोधन करते हुए उनको प्रभु कहते हैं। परंतु ये कोई औपचारिकता नहीं है, प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आप बुलाएंगे ए नंद, प्रभुपाद नकल करते ऐसे ही एक भक्त की जो दूसरे भक्त को बुला रहे, नंद गोपाल प्रभु इधर आओ मेरे जूते साफ करो तो बोलने के लिए प्रभु कह के बुला रहे, लेकिन हृदय से मान नहीं रहे कि ये आपके प्रभु है करके। आप मान रहे हो कि आप प्रभु हैं, वो आपके दास हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे नहीं होता ये प्रभु और दास। जब हम वैष्णव समाज में रहते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हर एक वैष्णव मेरा प्रभु है। जो सबसे वरिष्ठ भक्त होते हैं वो भी ऐसे मानते हैं। इतना ही है कि एक बाह्य दृष्टि से एक संसार में रहते हुए क्रम होता है, एक पद्धति होती है, इसका पालन करना पड़ता है। परंतु अंतःकरण में जो बड़े भक्त होते हैं वो मानते हैं कि एक नौसुखिया भक्त भी हो ये भी मेरा प्रभु है। और वास्तव में ये सही है। भले हम भक्ति में पहले आए हों परंतु भगवान के धाम कौन पहले पहुंचेगा क्या पता है? हो सकता है कि हमारे से बहुत बाद में आने वाला भक्त वो चले जाए ऊपर, हम यहीं पर रह जाए, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अति परिचयात अवज्ञा ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वैष्णव मतलब जो अन्यों को प्रभु मानता है अपने आप को दास मानता है, ये सेवा भावना है और ये आध्यात्मिक परिस्थिति है, सत्य है, इसके अनुसार ही चलना चाहिए। जब ऐसे नहीं चलते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। इसलिए तो भौतिक सृष्टि है। तो भौतिक सृष्टि में जब भगवान ने यहाँ पे मनुष्यों को आदि सब बनाया, यहाँ भी उन्होंने ऐसे क्रम बनाए हैं। इसलिए तो कोई ना कोई राजा होते हैं, फिर उनके मंत्री होते हैं, अधिकारी व्यक्ति होते हैं, कि घर में पिता होते हैं। तो हर जगह अधिकारी व्यक्ति होना आवश्यक है, नहीं तो भौतिक सृष्टि नहीं चल सकता। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई अधिष्ठाता व्यक्ति होते हैं, हर एक ग्रह या लोक के पीछे, हर एक कार्य के पीछे, सृष्टि के सृजन के हर एक स्तर के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होते हैं। तो इस तरह से भौतिक जगत में भी ऐसे व्यवस्था भगवान ने की है कि सेवा करनी होगी हमें, इसके बिना हम नहीं रह सकते। केवल फर्क यह है कि भौतिक जगत में सेवा डर के मारे करते हैं, आध्यात्मिक अवस्था में सेवा प्रेम से करते हैं। इसलिए हमको भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक जगत का प्राकट्य करना है तो हमारी सेवा प्रेम भावना से होनी चाहिए, उस सेवा को बोझ समझ के नहीं, उस सेवा को गुस्से से नहीं, उस सेवा को घमंड से नहीं, प्रेम से करना चाहिए। ये सही है। अन्यथा बाहर जगत में जो भी पालन करते हैं वो भय से चलता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि सब कुछ डर से चलता है। कोई श्लोक पता है आपको? सब लोग डर से अपना काम करते हैं। और ग्रीष्मास्मात् वातः पवते भीषो देति सूर्य है। भीषास्मात् अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। तो भीषास्मात् वातः पवते, जो वायु है वो डर के मारे अपना काम कर रहा है। वायु का काम क्या होता है? बहना। तो वायु भी अपनी सेवा है, वायु की सेवा है करना, लेकिन वायु बोले मुझे नहीं करना है सेवा। कभी हुआ है ऐसे? हुआ है ना इतिहास में रामायण में हनुमान जी को जब वज्रास्त्र लगा इंद्रदेव का, और हनुमान तो वायु पुत्र है, तो वायु ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो वायु बहना बंद हो गया तो क्या हो गया, सबको सांस लेना मुश्किल। सांस भी बात दूर रही, जितने भी हमारे शरीर के अंदर कार्य होते हैं वो प्राण वायुओं के आधार पे चलते हैं। 10 प्रकार के वायु हैं, 5 वायु, 5 मुख्य वायु, 5 उपवायु, उदान वायु, समान वायु, प्राण वायु इत्यादि, वो भी बंद हो गए। तो भोजन पचता नहीं, शौच होता नहीं, तो सब पत्थर के जैसे बन गए। जब वायु नहीं घूमता है तो एक व्यक्ति जड़ बन जाता है, पत्थर के समान या लकड़ी के समान बन जाता है। तो फिर सारे ब्रह्मा जी के कहने पर देवतागण आए, वायु के क्षमा याचना की और भरपूर आशीर्वाद दिए हनुमान को, तब वायु संतुष्ट हुए और बहने लगे। तो भीषास्मा प्रातः प्रवते, तो वायु भी अपना कार्य करता है डर से। भीषो देति सूर्यः, सूर्य भी जलता है और अपने किरणों को, उष्णता और प्रकाश को प्रदान करता है। कैसे? भीषो देति, डर के मारे। भीषास्मात अग्निश्चंद्रश्च, अग्नि और चंद्र भी अपने अपने कार्य करते हैं डर के मारे। मृत्युर्धावति पंचमः, तो मृत्यु है वो भी हमारे 5 प्राणवायुओं के पीछे भागता है केवल डर के मारे। तो मृत्यु के परे भी कोई अधिकारी व्यक्ति है जो मृत्यु का गला पकड़ेगा, ये तुम काम नहीं कर रहे हो। तो भौतिक जगत में भी सेवा होती है परंतु वो डर के मारे होती है, आध्यात्मिक जगत में सेवा होती है वो प्रेम के कारण होती है, ये अंतर है। वहाँ भी क्रम है, यहाँ भी क्रम है, वहां प्रेम या भय। तो यहाँ पे जब हमें वैकुंठ की स्थापना करनी है तो भय और क्रोध और लालच और इत्यादि ये सारे नकारात्मक जो भावनाएं हैं उनका परिवर्तन हमें प्रेम में करना है, फिर ये सेवा वास्तविक आध्यात्मिक हो जाएगी और ये भौतिक जगत का परिवर्तन वैकुंठ लोक में हो जाएगा। तो ये तो एकदम से संभव नहीं है, इसलिए भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म बनाया है। वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है? 4 वर्ण, 4 आश्रम। तो 4 आश्रमों में से श्रेष्ठ कौन सा है? आश्रमों में संन्यास आश्रम। तो सन्यासी के बात को सबको मानना चाहिए, ये भगवान ने बनाया। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, तो इस तरह से अधिकारी अधिकार का एक क्रम होता है, भगवान ने बनाया है इसे। उसी तरह से अभी वर्णों में कौन सा श्रेष्ठ? ब्राह्मण। तो जब ब्राह्मण अच्छे नहीं होते, प्रामाणिक नहीं होते, फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई?
ब्राह्मण के श्राप,
श्रृंगी ने जब श्राप दिया राजा परीक्षित को, तो उससे ब्राह्मणों का पतन जब हुआ उससे कलयुग को अवसर मिल गया प्रवेश करने के लिए, कलयुग घुस गया अंदर। और इसलिए जो कलयुग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो ब्राह्मणों से शुरू, तथा कथित ब्राह्मणों से शुरू होते हैं, और ब्राह्मणों के पतन होने के कारण ही तो फिर बुद्ध देव को आना पड़ा। लेकिन जिस प्रसंग को हमने अभी पढ़ा श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में अभी, तो उस समय ब्राह्मण आदर्श थे, प्रामाणिक थे, परंतु गड़बड़ किन में हुई? क्षत्रियों में हुई, विशेष रूप से किनको? वेण में। राजा वेन, राजा वेन के पिताजी जो थे महाराज अंग, वो बहुत आदर्श क्षत्रिय थे, बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति थे। वो साधुओं को मानते थे, ब्राह्मणों को सम्मान देते थे, परंतु उनका पुत्र दुष्ट निकला। उस दिन पिछली बार जब मैं आया तो वो चर्चा कर रहे थे ना, क्या वो विषय चल रहा था उस समय, याद है? जब मैं पिछली बार आया था तो माता और बच्चा, पिता माता बच्चा, क्या क्या सम, याद है?
माता के गुण
पुत्र में,
पुत्र में,
माता के गुण
पुत्र में,
पुत्र में आ जाते हैं, और पिता के गुण
पुत्री में,
पुत्री में आ जाते हैं। इसलिए जो आदमी लड़का पुरुष होता है उसके अंदर उसके माँ के गुण आते हैं और उसके नाना के गुण आते हैं। नाना अर्थात माँ का पिता, ठीक है, ऐसे गुण आते हैं। और जो कोई स्त्री होती है, महिला होती है, तो उसके गुण क्या होते हैं?
पिता
के गुण होते हैं और पिता के माँ के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इस तरह से गुण चलता है, फिर मिश्रण और हो जाता है। क्योंकि महाराज वेन की माता मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए वो गुण उसमें आ गए। अंग का भाग्य था या दुर्भाग्य था कि ऐसी पत्नी मिली और फिर पुत्र ऐसे निकला। तो कभी अंग जैसे पिता आदर्श धर्मपरायण व्यक्ति, और पुत्र कैसे निकलता है? वेन की तरह दुष्ट। कभी सर्वोच्च कोटि के दुष्ट व्यक्ति हिरण्यकश्यप, उनको प्रहलाद जैसे आदर्श भक्त मिल जाता है। यह है संसार। तो संसार के जो श्रृंखलाएं हैं इधर, ये सब इतने गहना कर्मणो गति है कि इस तरह से कर्म बंधन से सब कुछ जटिल हो गया है, इसका समझना बहुत मुश्किल है। तो अब महाराज अंग ब्राह्मण की बात मानते थे, क्योंकि यद्यपि क्षत्रिय सारे राज करते हैं, परंतु क्षत्रिय लोग जब तक ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेंगे, उनकी बातें नहीं मानेंगे, तब तक क्षत्रिय आदर्श रूप से राज नहीं संभाल पाएंगे। राजा वेन दुष्ट निकला। उसने सोचा, ये ब्राह्मण ऋषि मुनिगण कौन है, मैं इनकी बातें नहीं मानूंगा। तो जब ये एक अधिकार और आदेश पालन की जो एक प्रक्रिया होती है, एक शैली होती है, उसका पालन नहीं होता है तो उपद्रव मच जाता है। और इसलिए ऐसे ही हुआ, राजा वेन ने बात नहीं मानी और मनमाने ढंग से वो कुछ करने लगा, पूरा उत्पात हो गया समाज में। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, फिर सारे ऋषि मुनियों ने, वास्तव में हुआ क्या था कि ऋषि मुनियों ने ही राजा वेन को राजगद्दी पर बिठाया था। तो कभी कभी ब्राह्मण लोग भी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो देखते हैं गलती इसलिए नहीं कि वो उनमें कोई दोष है, परंतु कभी कभी क्या होता है, परिस्थिति ऐसी होती है जो उस समय के लिए कुछ करना पड़ता है, एक समाधान, तत्कालीन समाधान करने के लिए समस्या को कुछ करना पड़ता है। जब महाराज अंग निकल गए, जंगल में चले गए, एकांत में, रात बीच रात में वो किसी को बोले बिना निकल गए। जब सुबह लोगों ने देखा कि राजा है ही नहीं, तो अब सोचे कि राज्य कौन संभालेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। तो उस समय चोर डकैत बहुत बढ़ गए और सारे समाज में लोग बहुत ही भयभीत हो गए। जब राजा नहीं होता है तो फिर कोई शिस्त नहीं होता है, संयम नहीं होता है, तो दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं। तो आजकल आधुनिक जीवन में भी देखते हैं, जिन देशों में सरकार कड़क नहीं है तो वहाँ पे चोर डाकू बहुत चलते हैं। तो फिर साधुओं ने अपनी इष्ट गोष्ठी बुलाई और उसमें उन्होंने विचार विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चलो एक मामा नहीं होने के बजाय अंधा मामा हो कु मामा तो हो, ऐसे कहावत है ना, क्या है कहावत?
ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल।
ब्लाइंड अंकल बेटर देन नो अंकल, मतलब एक अंधा मामा भी हो लेकिन मामा तो है, कुछ तो होना चाहिए। तो चलो अब तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए वेन को ही बिठाएंगे। वो जानते थे कि वेन दुष्ट है क्योंकि बचपन से ही उसके दुष्ट काम चलते थे। वो बच्चों बचपन बच्चा भी था छोटा सा, तो दूसरे बच्चों को उठा के नदी में फेंकते थे, वो डूब जाते थे बच्चे, मर जाते थे। और सारे माता पिता राजा के पास जाते थे ऐसे ऐसे हुआ, राजा बेचारे हैरान हो गए, बहुत डांटा बहुत समझाया, लेकिन जो कुत्ते की दुम होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, नहीं हो पाए। तो अंत में इतने हताश हो गए बेचारे महाराज अंगद, वो खुद छोड़ के ही चले गए। और राजा वेन जब राजगद्दी पर आए, ऋषि मुनि ने उनको बिठाया, तो वो इतना क्रूर था, परंतु एक उसमें गुण था कि क्रूरता में उसने पक्षपात नहीं किया। सबके प्रति क्रूर, इसलिए दुष्टों के प्रति भी क्रूर थे वो। तो चोर डाकू इतने डरे हुए थे कि चोरी बंद हो गई बिल्कुल। तो साधारण चोर नहीं रहे लेकिन राजा ही चोर बन गए, रक्षक ही भक्षक बन गया। जब ये परिस्थिति हुई, दोबारा इष्ट गोष्ठी में सारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा अभी बात करना चाहिए राजा वेन के साथ। फिर राजा वेन को बुलाया, वो वेन के पास गए और फिर बोले, महाराज वेन एन रे। क्या करते हो तुम, इतना गड़बड़ किया, देखो इतने इतना उत्पात हो गया समाज में, तो हम तुम्हें उपदेश देने आए हैं। राजा वेन वैसे उनकी बात नहीं मानते थे, लेकिन अभी उन्होंने सोचा कि चलो बातों से मनाना चाहिए। अभी ये दूसरी बात है कि वेन इतना दुष्ट था कि बातें नहीं माने उसको। जो बातों से नहीं मानते वो बातों के क्या,
लातों के भूत बातों को नहीं मानते, लातों के भूत बातों को नहीं मानते,
लातों के भूत बातों को नहीं मानते। तो जिनके भाग्य में लात खाना लिखा है वो बात से नहीं मानते। तो पहले बातों से मनाने का प्रयास किया, उन्होंने नहीं मानी बात। फिर आगे चल के जब नहीं बात माने तो फिर ऋषि मुनियों ने क्या किया, इसका खुलासा, रहस्य का खुलासा आने वाले 2-3 दिनों में हो जाएगा। परंतु इस समय हम क्या देख रहे प्रसंग में, कि महाराज वेन ने बात नहीं मानी। अभी सारे ऋषि मुनि जाके बोल रहे महाराज वेन से कि देखो हमारी बातें माननी चाहिए, फिर मानने से क्या होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान ने बनाए पद्धति के अनुसार यदि हम चलेंगे, यदि अधिकारी गण भी प्रामाणिक होते हैं और प्रामाणिक अधिकारी के पद चिन्हों में हम चलते हैं और उनके आदेशों के अनुसार चलते हैं, तो 4 चीजें अपने आप आ जाती हैं जो श्लोक में बताई गई है। कौन से 4 श्लोक हैं बताइए इस श्लोक से।
आयु श्री बल कीर्ति,
आयु
श्री
श्री
बल
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 कीर्ति कीर्ति। आयु मतलब हमारी जीवन की अवधि बढ़ती है, श्री मतलब ऐश्वर्य संपत्ति संपदा ये बढ़ती है, और फिर
बल
बल बल बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, और कीर्ति कीर्ति भी बढ़ती है, ख्याति बढ़ती है। परंतु जब हम भगवान ने बनाए हुए पद्धति को स्वीकार नहीं करते हैं, अहंकार और घमंड के कारण किसी के अन्यों की बात सुनना नहीं चाहते, खास करके भगवान के प्रतिनिधियों की बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर ये चार इन चार चारे चारों वस्तुओं का घटन हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में ये दशा है, लोगों की आयु बहुत कम है, ऐश्वर्य भी कम है, हमेशा आर्थिक समस्या, आजकल बल भी सबका कम है, कीर्ति तो है ही नहीं। तो इसलिए ये वर्णाश्रम धर्म कम से कम इसका तो पालन होना चाहिए। जब अथॉरिटी अधिकार का पालन सब लोग करेंगे तो सब ठीक ठाक चलेगा। इसलिए सबको सम्मान करना चाहिए, परंतु सम्मान की भी एक का क्रम होता है। ब्राह्मण किसको सम्मानित करते हैं?
अन्य ब्राह्मणों को।
वैसे राजा को भी सम्मानित करते हैं, जैसे शमिक ऋषि तो थे, ध्यान में थे नहीं उस समय, तो वो नहीं कर पाए, परंतु बाद में जब उनको पता चला, उनको बहुत बुरा लगा। जितने भी सब ऋषि मुनि वगैरह सब आते थे राजा को मिलने के लिए, राजा को भी सम्मानित करते थे, परंतु ब्राह्मण एक दूसरे को मानते हैं। तो जिनकी ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति हुई है, जिनके पास ज़्यादा ज्ञान है, जिनके पास ज़्यादा वैराग्य है, इनको सम्मानित करते थे। क्षत्रिय किसको सम्मान करते हैं? ब्राह्मणों को, और
उनसे वरिष्ठ क्षत्रिय, उनसे वरिष्ठ क्षत्रिय,
उनसे जो ज्यादा शक्तिशाली क्षत्रिय है। क्षत्रिय किस बात को मानते हैं?
शक्ति,
बल को। ब्राह्मण किस बात को मानते हैं?
ज्ञान,
ज्ञान और वैराग्य को। फिर वैश्य किसका सम्मान करता है?
धनी,
ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को,
और धनी वैश्य,
और उनसे ज्यादा धनी जो वैश्य है उनको, उसे कम धनी वैश्य को नहीं मानते, उसे ज्यादा धनी जो है उसको मानते हैं। अरे इतना पैसा कमाए उससे मेरे से ज्यादा है, मानते हैं। और शूद्र
ऊपर के
सबको सम्मानित करते, और वैष्णव सबको सम्मानित करते। हरे कृष्णा।
ये वेन जो थे बहुत ही क्रूर थे, और बचपन से ही उन्होंने इतनी क्रूरता का प्रदर्शन किया, तो उनके पिताजी जो राजा थे और धर्मपरायण थे, उन्होंने उनको फिर दंडित क्यों नहीं किया?
किया, बहुत दंडित किया।
जैसे जिस दूसरे को मारने की वजह से उसको भी मृत्यु दंड देना चाहिए था। हम दूसरे इसमें भी देखते हैं, जैसे महाराज अंशुमान या दिलीप के उनके बेटे, तो वो भी बहुत क्रूर थे, उनको वो भी ऐसे करते थे, और उनको उन्होंने त्याग दिया लेकिन हत्या नहीं किया। लेकिन अगर ऐसे मार दिया जाता था तो फिर ये
महाराज अंग एक दृष्टि से देखा जाए तो महाराज अंग को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अपने जिम्मेदारी को त्याग के नहीं जाना चाहिए था, परंतु प्रभुपाद जी भी उसके तात्पर्य बताते हैं कि कभी कभी भगवान की ऐसी योजना होती है, व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिस्थिति ला देते हैं कि उसके लिए कोई चारा नहीं होता, कि वो हताश होकर वो निकल जाते हैं घर से। और प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे स्वयं के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उनके पारिवारिक जीवन में भी उनके पत्नी की ओर से उनको योगदान नहीं मिला, अंततः ऐसी परिस्थिति आई कि उन्होंने बोला अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, चले गए।
जैसे अगर कोई दूसरे नागरिक ऐसे उनके राज्य में इतना क्रूरता दिखा था तो महाराज उनको सूली पे चढ़ाते या फिर उनको मार देते, तो अपने बेटे को क्यों नहीं?
हाँ, वैसे क्योंकि और कोई था नहीं, जो राजा राज्य चलाने के लिए कोई चाहिए ना योग्य व्यक्ति, तो उन्होंने सोचा कि इसको सुधारूं मैं। कभी कभी बचपन में युवा अवस्था में लोग दुष्ट होते हैं, बाद में सुधर जाते हैं, ऐसे होता है। हमारी संस्था में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सुधर के आए हैं। पहले क्या क्या थे, कई लोगों का इतिहास देखोगे, कोई गुंडे थे, कोई क्या थे, कोई चोर थे, तरह तरह के लोग आए, रंगीन इतिहास लेकर आए हैं। लेकिन बाद में सुधर गए सब भक्ति में आके। तो उनके मन में विचार था कि चलो सुधार ले इनको। मृत्यु दंड नहीं दिया, इतना ही नहीं किया उन्होंने, बाकी जितने भी दंड उपलब्ध थे वो सब करके देखा, लेकिन नहीं हो पाया। हर्षल है
महाराज, इस समय डायनेस्टिक लीडरशिप प्रिवेलेंट थी क्या? मतलब जैसे कि उनके राज्य में कोई और योग्य व्यक्ति राजा बनने लायक नहीं था, और उस समय डायनेस्टिक लीडरशिप प्रिवेलेंट थी, इसके लिए राजा का बेटा ही एक ऑप्शन रह गया था ऋषि मुनियों के लिए, तो इसके बारे में
हाँ परंपरागत ही सब कुछ चलता था, क्योंकि योग्यता भी वैसे ही जन्म के हिसाब पे होती थी, और जो वरिष्ठ पुत्र हुआ करते थे राजा के वो बन जाते थे राजा साधारणता। कभी कोई समस्या हुई वो दूसरी बात है, साधारणता ऐसे ही होता था। इसलिए मुनियों ने सबसे पहले देखा कि राजा के पुत्र को राजगद्दी पर बिठाएं। तो ये तो प्राचीन राज ऋषियों की परंपरा ऐसे ही चलती आई है, वंशज वांशिक परंपरा, राज ऋषियों की परंपरा। वेरी गुड।
प्रामाणिक अधिकारियों के प्रचिन्हों में चले आपके प्रवचन, तो इसलिए एक प्रामाणिक अधिकारी कौन होते हैं और ऐसे हम कैसे पहचानेंगे? और जो महाभारत में जो इशू है, जो इसमें धृतराष्ट्र को भी युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि ये प्रामाणिक नहीं है, फिर भी क्यों उनको फॉलो करते थे?
एक मर्यादा की बात थी, एक मर्यादा भी होती है। पिता तुल्य थे धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के लिए, पांडवों के लिए, और वो राजा थे, तो उन्होंने सोचा कि जो योग्य है धार्मिक दृष्टि से ही हमको सब कुछ करना चाहिए, हमारा राज्य भी लेना है परंतु धर्म के अनुसार हमको करना चाहिए। जब पांडव वनवास में थे तो उस समय भीम, अर्जुन, द्रौपदी ये बहुत युधिष्ठिर महाराज को डांटते थे, ये सब आपके कारण हो गया। तो अर्जुन अपने तीर धनुष को लेके अभ्यास करते रहते, टांग 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 खींच के तैयारी करते, कब आएगा वो, कब मैं ये गांडीव लेके कौरवों को नष्ट करूँगा। भीमसेन भी अपने दांत रगड़ते बैठते थे कि कब वो समय आएगा, परंतु युधिष्ठिर महाराज उनको सांत्वना देते थे कि नहीं, दुनिया में संपत्ति आती है जाती है, अस्थाई है ये सब, परंतु धर्म स्थाई है, इसलिए धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। अस्थाई चीज़ों के पीछे जो स्थाई है उसको खोना नहीं चाहिए, इसलिए हमको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इसलिए तो युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज बोलते हैं। और जब वो राजगद्दी पर बैठे युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, उस समय भी उन्होंने धृतराष्ट्र का कितना सम्मान किया, पहले से ज्यादा सम्मान किया। एक मर्यादा होती है, शिष्टाचार। ठीक है, प्रमाणिक अधिकारी वो होते हैं जो उनके अधिकारी का पालन करते हैं, अधिकारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह से चलता है। सरल है, जो उनके अधिकारी व्यक्ति हैं उनके आदेशों का पालन जो सही तरह से करता है वो प्रमाणिक। उसमें यदि कोई गड़बड़ी हो तो फिर वो दूसरी बात है। अधिकारी व्यक्ति ही कोई गलत आदेश दे रहे हो जो कि उनके अधिकारी व्यक्ति के आदेश के विरुद्ध है, तो फिर यदि कोई भागवत क्लास में बैठ के बोले कि चंद्रदेव ही परम सत्य है तो व्यक्ति के रूप में उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे, लेकिन उसकी बात हम नहीं मानेंगे। तो बोलेंगे नहीं, आप जो बोल रहे हैं सही नहीं है, कृष्ण परम सत्य है, चंद्रदेव सब परम सत्य नहीं। परंतु ये सब बातें आती हैं व्यवहारिक जीवन में, इसलिए समझदार व्यक्ति आसानी से ये सब कर सकता है। व्यक्ति को समझदार होना चाहिए। नहीं हरी राम जी,
मेरा एक ही दो प्रश्न है। एक जो आज का अधिकारी जो इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस, हमारा जो अधिकारी का ऊपर हमारा निर्भरता, हम लोग कितना इंडिपेंडेंटली उनका ऊपर हम जब निर्भर रहेंगे, डिपेंडेंट कितना रहना, इंडिपेंडेंट कितना रहना, और हमारा जो भी इंडिपेंडेंटली हम सेवा करते हैं उनका आदेश लेके, तो वो हम कैसे समझ में आएगा कि
रस्सी कितना लंबा है उसके हिसाब। हम सब बंधे हुए हैं रस्सी से, तो हमको कितना लंबा रस्सी है उस हिसाब से, छूट कितना दिया हुआ है हमको उस हिसाब से चलना है।
और हमको कैसा पता चलेगा कि हमारा अथॉरिटी हमारे से संतुष्ट है?
रस्सी तोड़ना नहीं है कि नहीं?
इस अधिकारी के संबंध में जब हम देखते हैं कि हमारे से वरिष्ठ हैं अधिकारी भी हैं और हमें उनके आदेशों का पालन करना होता है, आदेश सही है परंतु उनके अंदर वो गुण नहीं है जो एक आदर्श अधिकारी में होना चाहिए, तो क्या भावना होनी चाहिए? और दूसरा चीज, कई बार महाराज की संस्था में आने के बाद कुछ सालों के बाद नेचुरली हम अधिकारी बन जाते हैं, हमारे से नीचे कुछ भक्त आ जाते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है कि हम उनके ऊपर अधिकार जमा सकें, परंतु एक सेवा के रूप में कई बार उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तो क्या भावना होनी चाहिए हमारा हमारे से जूनियर्स के प्रति और हमारे वरिष्ठों के प्रति? दोनों
वैसे दुनिया में कोई आदर्श नहीं है, बहुत मुश्किल है आदर्श व्यक्ति को पाना, विरला ही दुर्लभ ऐसे व्यक्ति होते हैं। और आदर्श किस दृष्टि से हम देखते हैं, यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो फिर दोष तो बहुत दिखेंगे, कलो दोष निधे राजन, तो दोषों का सागर है ये। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो बहुत सद्गुण दिखाई देंगे, अरे ये जप करते हैं देखो, इतना जल्दी उठते हैं सुबह देखो, जप में सोते नहीं है देखो, कभी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती है। व्यवहारिक जीवन में थोड़े हो सकता है, क्योंकि सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो इसीलिए से समस्याएं आ जाती हैं थोड़ी बहुत। किसी के नेतृत्व की पद्धति कुछ अलग होती है।
मुश्किल, लेकिन जब हम उस स्थान पे आते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे हम भी वो योग्य नहीं।
हमने उस स्थान में आने तक अनुभव किया है, उस अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। जो सकारात्मक अनुभव हुए हैं उनको, उनसे सीखना अच्छा चाहिए और वैसे करना चाहिए। जो नकारात्मक अनुभव हुए हैं उनसे भी सीखना चाहिए और वैसे नहीं करना चाहिए। कैसे उसे हम देखते हैं, हमेशा हम दोनों देखेंगे। हमारे परिसर में हम जब भक्तों के बीच में रहते हैं दोनों प्रकार की चीज़ें हमें दिखाई पड़ेंगी, मिश्रित रूप में सब दिखाई पड़ेगा।
महाराज आपने बोला था कि आपने पिछले क्लास में बताया था माता के गुण सन में आते हैं और पिता के गुण बॉटम में आते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, क्रॉस होते हैं, सेटल होते हैं। जैसे क्रॉस कोई मधुर वाणी बोलता है और सेटल मतलब करुणा होती है, अलग अलग। तो जहाँ जिस शास्त्र में प्रमाण दिया गया है वहाँ पे डिस्टिंक्शन किया गया था महाराज कि मतलब ग्रॉस और सटल गुण कैसे जाते, मतलब
ये ऐसे लगभग बात है। पिता के भी तो गुण थोड़े आ ही जाएंगे ना, जब दोनों के पुत्र हैं, वो केवल माता के पुत्र नहीं है, दोनों के हैं तो पिता के भी तो आएंगे। परंतु प्रमुखतः ऐसे तो पिछली बार जब आए थे मैं तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऐसे कहते वो जरा वो श्लोक और तात्पर्य दिखा देना, हाँ। तो उसमें प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं, उद्धव हरि प्रभु संतुष्ट नहीं हो?
व्यवहारिक उदाहरण देखो, उसका प्रश्न
सबसे बड़ी समस्या इसी में आती है। दुनिया से व्यवहार करने में ही समस्या है ना, इसलिए सब ज्यादा से ज्यादा परेशानी इसी में होती है। ठंडी गर्मी वो सब सहन किया जा सकता है, लेकिन इससे जमता नहीं, उसका व्यवहार अच्छा नहीं, उससे बातचीत नहीं कर सकते, ये आदमी हमको अच्छा नहीं लगता, इसके कार्यकलाप हमको पसंद नहीं, ये सब समस्या है। जिससे हमारे सारे मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं नारद मुनि, गुणादिकम मुदम लिप्से, गुणादिकम गुणाधिकम मुदम लिप्से, जो हमसे कनिष्ठ है तो उन गुणाधिकम मतलब हमसे अधिक जिनके गुण हैं उनको देखकर हमें मुदम प्रसन्न होना चाहिए। फिर वही श्लोक है,
पढ़ो
पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो आदिरस प्रभु को देखकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं।
गुणादिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणादमात,
अनुक्रोशम गुणादमात, अनुक्रोशम अर्थात करुणा, जो हमसे कनिष्ठ है उनको देखकर करुणा, प्रेम से, करुणा से बात करनी चाहिए, करुणा से व्यवहार करना चाहिए और
मैत्रीम समानाद अनविच्छेन।
मैत्रीम समानाद अनविच्छेन, तो समाना जो हमसे समान है उनसे मैत्री की भावना रखनी चाहिए। और ये किसको करना चाहिए?
न तापेर अभिभूयते।
तो इसका अर्थ समझा,
मतलब
न ताप अभिभूयते,
तीनों ताप उसको स्पर्श नहीं करें।
जो इसका मतलब है कि ये तीन यदि नहीं करोगे तो जीवन में ताप या संकट आ जाएगा, है कि नहीं? जब हमारे अन्यों के साथ व्यवहार में कोई उथल पुथल हो जाता है तो फिर मन विचलित हो जाता है कि नहीं? इसलिए जो व्यक्ति ऐसे कठिनाई से बचना चाहता है उसे चाहिए कि वो इस तरह से व्यवहार करे। हाँ उद्धव हरि प्रभु आगे बोलो फिर।
तो उदाहरण कह रहे हैं, तो कोई हम सुनते हैं दूसरा दूसरा भक्तों से कि हम कहाँ से कुछ बता रहे हैं, तो बोला गया कि अगर सोलह माला किए हैं और बनाए हैं, जनरली साधुओं से सुनते हैं, तो उसको खाना चाहिए, हम क्लास में सुने या कहीं पर सुने, फिर जब प्रैक्टिकल इशू में आते हैं तो अगर सिचुएशन के हिसाब से अथॉरिटी बोलेंगे कि नहीं दो माला करते हैं तो शांति चलता है, अरे छोटे लोगों को दुख लगेगा या ऐसा कुछ, तो डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट कहते हैं, तो उनको हम प्रामाणिक अप्रामाणिक बोल के भी हमारे अथॉरिटी को हम नहीं मानते वहाँ पर, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जब डिसीजन लेते हैं हमारा स्टेप क्या होना है, वो सोलह वाला होना है या दो वाला होना है या कैसा सिचुएशन में कैसा डील करना है, एक जो उदाहरण ऐसा है।
इसलिए हमने बोला समझदार होना चाहिए। जो भक्त बनते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, है ना? बार बार शास्त्रों में ये बताया गया है ना कि भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसलिए तो भक्त बनाए वो। जब बुद्धिमान है ही तो समझदार होना चाहिए। जो शास्त्रों में सारी बातें बताई गई है वो एक सामान्य बातें हैं, जो हर एक परिस्थिति के लिए शास्त्रों में इतनी बातें तो नहीं बताई जा सकती। अलग 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 परिस्थितियाँ होती हैं, हर दिन 10, 20, 50, 100 ऐसे परिस्थितियाँ हो जाती हैं, हर एक परिस्थिति के लिए थोड़ी ना शास्त्रों में होगा। तो हमको वो समान जो एक नियम है, सिद्धांत है, उसको ध्यान में रख के सोचना चाहिए कि विशेष किसी परिस्थिति में इसको लागू कैसे करना चाहिए। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो समझदार बने। जैसे साधारण नियम है कि जो सोलह माला जप करते हैं उन्हीं के हाथों से बनाया हुआ हम प्रसाद स्वीकार करें, और कई बार एक आज किसी परिस्थिति में किसी ने कहा ये दो माला तो कर रहे हैं थोड़ा खाओ नहीं तो बुरा लगेगा, तो समझदार होना चाहिए इसमें। इसका क्या करिए, रोज हो रहा है कि एक आध बार कभी हो रहा है, ये सोचना चाहिए। रोज हो रहा है तो कोई गड़बड़ है, फिर रोज तो नहीं हो रहा है। हाँ
रोज नहीं हो रहा है
इसलिए भक्तों में भक्तों से बैठ के चर्चा करना चाहिए। इसको इष्ट गोष्ठी बोलते हैं। इष्ट, इष्ट मतलब प्रिय, गोष्ठी मतलब सभा। इष्ट गोष्ठी मतलब जहां भक्त लोग इकट्ठे होकर प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से विचार विमर्श करेंगे। दुष्ट गोष्ठी नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसे इष्ट गोष्ठी दुष्ट गोष्ठी बन जाती है, झगड़े पे आ जाते हैं भक्त लोग, ऐसे अच्छा नहीं है। तो जब ऐसी कोई समस्या होती है ना, तो दो चार थोड़े वरिष्ठ भक्तों के साथ में बैठ के थोड़ा चर्चा कर सकते हैं, कैसे करना है, क्या है, समाधान हो सकता है। ऐसी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि हमको बहुत विचलित होना चाहिए, हाँ, और थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, ठीक है। हर प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में नहीं मिल सकता, शास्त्रों में सिद्धांत दिए जाते हैं, इन सिद्धांतों को भलीभांति समझ के फिर दैनिक जीवन में कैसे उसको अमल करना है वो बुद्धि हमको होनी चाहिए। और भगवान बुद्धि देते हैं, और जहां हमको कठिनाई हो रही है कोई निर्णय लेने में, तो इष्ट गोष्ठी, जरूरी नहीं है कि सारे भक्त बैठ के करें, एक दो तीन भक्तों के साथ भी चर्चा करके निर्णय लिया जा सकता है कि इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है।
हाँ,
ये तो होगा, इसलिए अभी देखो ये एक उदाहरण ले लेते हैं कि रोज का प्रसाद है वो 16 माला करने वाले ही करते हैं, लेकिन एक आध बार किसी ने प्रेम से कुछ आके दिया, प्रभु जी आप जरा ले लीजिए, मैंने आप सबके लिए बनाया है, और वो भक्त हैं 2 माला करते हैं, तो एक भक्त बोलते हैं कि देखो इतने अच्छी भावना से बनाया है, हाँ रोज तो नहीं लेते, एक बार अभी कभी आके दिया है उन्होंने, तो उनको बुरा लगेगा, तो उनको भक्ति में प्रोत्साहन मिलेगा यदि हम ले लें तो थोड़ा बहुत, तो ले लें। कोई भक्त ऐसे बोल सकता है, कोई भक्त थोड़ा यदि ज़्यादा हुआ हो तो बोलेगा नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकते, उसको 16 मतलब 16 होने चाहिए, 15 भी नहीं होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कोई, तो यदि ऐसा कोई है जो बोलेगा कि 15 भी नहीं 16 का 16 चाहिए, तो उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ठीक है तुमने कहा ना कहा, हाँ ठीक है, इतना भी सोचना अच्छा नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा सोचने से भी वो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। बेस्ट और भक्तों से बात करके देख ले, सुलझा लो, ठीक है। हाँ वैजेश्वर,
वैदिक सभ्यता के बारे में पूछना था कि हम सुनते हैं वैदिक सभ्यता में पूर्व काल में जो बच्चे हुआ करते थे माता पिता को प्रणाम करते थे, और विद्यार्थी हुआ करते थे वो गुरुओं को प्रणाम करते थे, तो आज की प्रणाली में नहीं है,
आज उल्टा है।
तो आज भी हम उसी बातों को दोहरा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये पुनर्
स्थापित करना चाहिए,
स्थापित करना चाहिए, जो बच्चे हैं माता पिता को प्रणाम करिए।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन प्रश्न ये होता था हमारा कि हमारे माता पिता ऐसे है ही नहीं, हम क्यों प्रणाम करें, क्योंकि उनका रहन सहन खान पान जो मतलब पूर्व काल में ऐसे थे माता पिता तो हम प्रणाम कर सकते, लेकिन अभी ऐसे गुण दिखी नहीं रहे।
युधिष्ठिर महाराज जो प्रश्न आए ना, युधिष्ठिर महाराज भी धृतराष्ट्र को मानते थे, जाके प्रणाम करते थे, प्रणाम करने में क्या है, माता पिता है कर लो, लेकिन आवश्यक नहीं है। यदि ऐसे कई हैं हमारे भक्त लोग भी हैं जिनके पिता शराब पीते हैं, बच्चा भक्त बन गया, कभी कभी पिताजी भक्त है बच्चा शराब पीता है, कभी पिता शराब पीता है बच्चा भक्त बन गया, फिर भी उसको अपने माता पिता को सम्मान करना चाहिए। हाँ, पिता को बदलने का प्रयास करना चाहिए, घर में कुछ उत्पाद किया तो रोक, वो अलग बात है, लेकिन प्रेम सम्मान से ही उसको बदला जा सकता है, प्रयास तो करना चाहिए।
माता पिता के संग वही साधु संतों के साथ, गुरुजनों के साथ, जैसे अभी हम अलग अलग जाते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि साधु संत आते हैं तो आपको प्रणाम वगैरह करना चाहिए, मतलब संस्कृति के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं कि आप मुझे प्रणाम करना तो बता सकते।
हमें नहीं बताना चाहिए, किसी और को बताना चाहिए,
मुझे प्रणाम कीजिए ऐसा नहीं, इन जनरल साधु संतों के आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए।
एक संस्कृति के दृष्टि से सबको ये पता होना चाहिए, हरे कृष्णा। तो गोवर्धन पर्वत बहुत अच्छा बनाया, हाँ। तो क्या क्या किया कल?
कल प्रभुपाद तिरुमला
गोवर्धन पूजा के बाद गोवर्धन